ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8, अध्याय का नाम है भगवद प्राप्ति और आज श्लोक संख्या लेंगे 17। सहस्त्र युग पर्यंतम अरहत ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना सहस्त्र युग पर्यंतम अरहद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना सहस्त्र युग पर्यंतम अरहद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। इसका अनुवाद है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के इतने वर्ष के तुल्य हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, खरब और नील, है ना, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यांता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारनानों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ देते हैं श्लोक। श्लोक इस तरह से है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की उम्र जो है कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी है। तो चतुर्युगी कैसे होती है, कलयुग जो है सबसे छोटा है, कलयुग की कितनी उम्र है, 432,000। 432,000 में 432,000 जोड़ दोगे तो वो आ जाएगी द्वापर युग की उम्र, और फिर द्वापर युग में फिर जोड़ दोगे 432,000 तो वो उम्र आ जाएगी त्रेता युग की, और फिर उसमें फिर 432,000 जोड़ दोगे तो वो उम्र हो जाएगी सतयुग की। ठीक है, सतयुग सबसे बड़ा होता है। तो इन सबको जब मिला देते हैं हम लोग और उनको फिर 1000 से गुना करते हैं तो वो जो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। इसी तरह से 1000 चतुर्युगी जो है उनकी रात बनाती है, और जैसे हम लोग 24 घंटे का एक दिन है ऐसे उनका भी 24 घंटे का एक दिन है, और फिर 30 दिन का एक महीना है उनका, फिर 12 महीनों का एक साल है। तो ऐसे दिन के उनके फिर महीने और साल है, और सब 100 साल जीते हैं वो भी, उनकी भी उम्र 100 साल है लेकिन उनके दिन इतने बड़े हैं, है ना। जैसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो एक चींटी है, चींटी भी अपनी तरह से तो 100 साल जीती है लेकिन उसके 100 साल 2-3 दिन में ही बीत जाते हैं। चींटी की उम्र कितनी होती होगी, 2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, उसी में वो पैदा होती है, एक ही दिन में सब हो जाता है, एक दिन में वो पैदा हुई, एक दिन में वो जवान भी हो जाएगी बिल्कुल एक ही दिन में। हमारा जो एक दिन है तो उसके लिए तो कितना। तो इसी तरह से अलग अलग जीव जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जो है अवधि है, और यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हालांकि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी बताई है, 31 मील और कितने खरब और फिर अरब, है ना। हाँ, इतनी बताने के बाद भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ एक चमक, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। नित्यता मतलब शाश्वत, बच्चे को उनको आवाज नहीं करने दो ना, बच्चों को वहां ले जाओगे तो नित्यता मतलब शाश्वत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो ऐसे ऐसे है, ऐसे जैसे फ्लैश बस। ब्रह्मा जी की उम्र कैसे है, ऐसे, क्योंकि यहां बता रहे हैं कि कारणानु जो समुद्र है, कारणानु में कारणानु जो समुद्र है सागर है उसमें असंख्य ब्रह्मांड जो है अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते हैं, जैसे बुलबुले होते हैं ऐसे प्रकट होते हैं और लोप लुप्त हो जाते हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि कैसे हमारी जो जीवन है कितना छोटा जीवन है हमारा। ब्रह्मा जी का जीवन अगर एक फ्लैश के समान है तो हमारे 100 साल तो कुछ भी नहीं है, है ना। हमारे 100 साल जो है ब्रह्मा जी के कुछ भी नहीं है, सेकंड के बराबर हो गए तो कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो है वो कितने साल हो जाते हैं। तो भगवान ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, क्या क्या प्रसंग क्या चल रहा है, याद है किसी को, या आगे जोड़ पीछे छोड़, याद है कि कहां से प्रसंग चल रहा है, क्यों 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, कहां से आ गए है, ये चैप्टर कैसे शुरू हुआ था, याद है किसी को, नहीं वो तो उसका नाम है, प्रश्नों से शुरू हुआ था, है ना। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे ना, उनके उत्तर दे रहे हैं भगवान, है कि नहीं। और उसमें से एक उत्तर, एक प्रश्न उसका ये था, क्योंकि वो तो युद्ध में है, युद्ध में खड़ा है वो, तो कह रहे कि युद्ध में मतलब मरने के समय कैसे याद आएगा, युद्ध में तो मरने मराने मारने का तो सारा सीन है। तो एक क्वेश्चन उसने पूछा है भगवान से, हे भगवान मरने के समय कैसे आपको याद कर सकते हैं जब मृत्यु पड़ी सामने खड़ी हो। उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान, उसका उत्तर देते देते भगवान जो है इस बात पे आ गए हैं, है ना। इसलिए भगवान ने सब बातें बताई, अंत काले च मामेव समनुक्ता कलेवरम यह प्रयति, फिर सारी ये बातें फिर बताया कि इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, अतः हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि कैसे तुम अभ्यास करो, फिर बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, है? और फिर जो है वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और इस तरह से फिर बता रहे हैं, इस लोक के बारे में बता रहे हैं, ये बात करने के बाद कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान के धाम जाने के बाद फिर वो इसमें नहीं लौटते। तो इसलिए फिर जब ये बात बता रहे हैं तो फिर बता रहे हैं ये वाली बात बताई, इस जगत में सर्वोच्च लोग से लेकर निमंत्रण सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्म लोग जो सबसे ऊंचा है कितना बड़ा, कितनी देर समय तक रहता है वो, है ना। तो सारे चाहे ब्रह्मा का लोक है चाहे उससे नीचे लोक है, सब में जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु लगा हुआ है। तो ये बात समझनी है, ये बात समझनी है, है ना। जैसे आज मेरी धर्मपत्नी बता रही थी कि एक कोई एक्सीडेंट हो गया कि मेरा परिवार का, तो एक्सीडेंट हो गया तो जब हॉस्पिटल में गए तो पत्नी को तो डेड घोषित कर दिया, मृत है, और पति के भी टांगे टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। तो पति को एक सफेद कपड़े डाले कोई व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखता है, जैसे सिर पे हाथ रखता है तो उसको आवाज सुनाई देती है, ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, ये औरत तो जिंदा है। तो फिर उसकी पत्नी भी कहती है मुझे भी सफेद कपड़ों वाला एक व्यक्ति नजर आया था, उसने सिर पे हाथ रखा। तो उसकी बेटी थी, वो प्रेग्नेंट थी, बेटी भी बच गई, इसलिए उसकी बेटी का नाम रखा मिराकल, चमत्कार, मिराकल। ये थोड़ा चमत्कार है, क्या चमत्कार है, मरेंगे नहीं क्या कभी, ये है मूर्खता। तो उसको चमत्कार कहते हैं, मूर्ख है, या तो उनको अमर कर देते ना तब तो हम मानते कि सिर पे हाथ रखा और कभी मरेंगे नहीं, अभी बच गए तो मरेंगे। इसलिए तो ये समझनी है बात, बड़ी गहरी बात है, सूक्ष्म बात है ये, बात हमें समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत गहरी बातें समझा रहे हैं हमें। ये मृत्यु लोक है, भगवान भी हुई, इसीलिए इस भगवदगीता का नाम है भगवदगीता यथारूप एज इट इज, जो भगवान कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी वही बात आगे रख रहे हैं। भगवान यही हमें बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु तो ब्रह्मा जी को जाएगा, उससे निकलो ना। ये क्यों आ गया मृत्यु से बच गए, फिर हमेशा के लिए बच गए, फिर मृत्यु नहीं आएगी, तो है मृत्यु लोग, इस जगत का नाम ही मृत्यु, यही तो बताया भगवान ने, यही तो बताया ना पहले, नाम पेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम ना पुनवंती महात्मा न संसिद्धि परमाम गता, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, ये है मेरा कल, ये है चमत्कार, वही हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, हम आत्मा है, और इसके लिए हमें भजन ये सारी चीजें भक्तों का संग ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो दुनिया है वो तो आपको यही बता रही है कि आप शरीर हो, इसी कारण से सारी मुसीबतें हैं, सारी दिक्कतें जो है इसी कारण से हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते, हम आत्मा है और अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। शरीर तो कपड़ों के समान है, अब कोई व्यक्ति जो है अपने आप को कपड़ा समझ ले क्या हाल होगा उसका, मान लो अगर हम जा रहे हैं कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कपड़े फट जाते हैं, तो पहले कपड़ों को दर्जी के पास लेके जाते हो या खुद हॉस्पिटल जाते हो, है क्या फिर, तो फिर लेकिन यहां उल्टा हाल है, क्योंकि आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, यहां शरीर के बारे में लगे हुए हैं, आत्मा का पता नहीं है कहां है। कई लोग तो कहते हैं आत्मा किसी ने देखी नहीं जी, देखी नहीं आत्मा कहां होती है, इनको नींद आ रही है आत्मा के बारे में, आपको नजर आती है आत्मा, आत्मा नजर आती है किसको, आत्मा नजर आती है बताओ, हाथ खड़ा करो। तो आत्मा, हाँ तो आत्मा के बारे में हमें जब हम प्रयास करेंगे अभ्यास करेंगे तो आत्मा नजर आएगी, आत्मा ही तो है शरीर में, आत्मा निकल जाती है तो शरीर कौन रखता है, पर आत्मा शरीर, जैसे एक व्यक्ति जब मर गया तो किसी ने कहा भैया क्या हो गया, चला गया जी चला गया, वो कहां चला गया भैया, ये तो लेटा हुआ है कहां चला गया, तो ये आत्मा निकल गई, इसी आत्मा चलेगी, वो आत्मा को देखा था क्या, आत्मा को तो देखा नहीं, जिसको चुम्मा चाटा जफिया मारी नहलाया धुलाया वो तो लेटा हुआ है भाई, और जिसको देखा नहीं वो चला गया तो रोने की क्या जरूरत है, नहीं समझ आई बात, नहीं आई, और जिसको देखा ही नहीं वो चला गया तो रोने की क्या जरूरत, रोके रहे हो, ये है विडंबना। जब आत्मा शरीर में है तब तो देखते नहीं उसको, और चली जाते तो उसके लिए रोते हैं, शरीर के लिए थोड़ा रोते हो, शरीर तो पड़ा वहीं पर, मम्मी बना के सजा दो उसको, कोई नहीं रखता घर में, कोई नहीं रखता,
जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, भूख बन जाएगा, भूख बन जाएगा, जल्दी निकालो। इसीलिए आत्मा है, आत्मा इंपॉर्टेंट है, आत्मा प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे जीवन में। आत्मा के कार्य, आत्मा की खुराक, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही भगवान बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी की उम्र बताई, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उम्र इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उससे क्या है, फिर भी मरेंगे एक दिन है? किसी की उम्र 50 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है, मरना तो है, उससे फर्क क्या पड़ा। तो इसीलिए जो भी समय हमारे पास है उसका हम बेस्ट यूज करें, ये है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। मतलब ये जो हमने सौदा किया है ना, ये शरीर ले लिया है, ये आपने बैड बार्गेन किया है, ये बुरा सौदा किया आपने, लेकिन इसका बेस्ट यूज आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि इसको भगवान की सेवा में लगा दो, ये बेस्ट यूज हो जाएगा। बार्गेन तो बेस्ट है, शरीर तो लेना ही नहीं चाहिए ना, शरीर तो जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु के साथ आएगा, वो कष्टदायक है, तो शरीर लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब ले लिया किसी कारण से, तो इसको भगवान की सेवा में लगा दो तो बेस्ट यूज हो गया इसका, क्योंकि यही यही आत्मा का धर्म है। आत्मा जो है भगवान की सेवा तो करना चाहती है, यही आत्मा का धर्म है। और यहां पर जैसे बताया है कि जैसे कैसे जो है कलयुग में आते आते कैसे धर्म का ह्रास हो जाता है, ये भी देखना चाहिए कि हम कलयुग में रह रहे हैं, हम सतयुग में नहीं है, द्वापर में नहीं है, त्रेता में नहीं है, हम लोग जो है कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग ये समझना है। इसलिए कलयुग में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं, क्या देखो क्या लिख रहे हैं, ये कलयुग है, कलयुग में इस युग में ताप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं। और उससे पहले हाँ, सबसे अंत में कलयुग जिसे हम विगत 5000 वर्षों से भोग रहे हैं आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा ताप का प्राधान्य रहता है, बोलबाला रहता है ना? जितना ज्यादा पापी उतना ज्यादा बड़ा आदमी, और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं उसको पागल कहते हैं, पागल हो गए, अच्छा भला था, पता नहीं क्या हो गया, जब से हरि कृष्णा में जुड़ा है, भक्तों का संग किया, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला था, तो सदाचार का पालन करना शुरू कर दिया उसने, शराब छोड़ दी उसने, पिक्चरें देखना छोड़ दिया उसने, क्लब में जाना छोड़ दिया, आजकल सारे लोग यही कर रहे हैं। ये बात को हमें समझना है कि जो जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कलयुग का प्राधान्य है, कलयुग का राज है, आखिर में तो ये होना ही होना है। जैसे बताया ना, इतना बढ़ जाएगा कि भगवान को खुद आना पड़ेगा कल के अवतार लेके। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसको गोल्डन एज कहा है, 10,000 वर्ष जो है ये स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग। इसमें जैसे अब आप नाम ले रहे हो है? आप जैसे धोती कुर्ता में या तिलक लगा के इस तरह इस वेश में भी आप जा सकते हो, कहीं आपको कोई कहेगा नहीं। लेकिन कलयुग कितना बढ़ जाएगा कि कोई भगवान का नाम नहीं ले सकेगा। जैसे कई कंट्रीज में अभी भी है, कई आप मुसलमान कंट्रीज में जाओ, वहां आप ऐसे नाम नहीं ले सकते, स्ट्रीट में नाम नहीं ले सकते। कई कंट्रीज में आप धोती कुर्ता नहीं जाके, धोती कुर्ता में अगर आप एंटर करोगे तो वहां एयरपोर्ट से आपको वापस भेज देंगे। जैसे अब हम श्रीलंका गए थे गुरु महाराज के साथ, श्रीलंका बर्मा, बर्मा गए थे गुरु महाराज के साथ, हम पैंट कमीज डाले गए थे, गुरु महाराज ने भी पैंट कमीज डाली, हमने भी पैंट कमीज डाली, जीवन में पहली बार, मतलब जब से भक्त बने हैं कभी मौका ही नहीं आया पैंट कमीज डालने का, लेकिन डाली, अजीब लग रहा, शक्ल देख रहे हैं शीशे में तो बहुत अजीब लग रहा, बहुत अजीब लग रहा, गुरु महाराज ने भी पैंट कमीज डाली साथ में, क्यों? क्योंकि वो अगर धोती कुर्ता में देख लेंगे तो पकड़ लेंगे, जाओ जाओ कुछ भी कह के हमें बाहर निकाल लेंगे। अभी भी है, और तो बहुत 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 भाग्यशाली हो कि आपका, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि तो मनुष्य जन्म है ले यार, जन्म सार्थक करी करे परवाह उपकार। अगर भारत भूमि में किसी का जन्म हुआ है तो उसको जन्म सार्थक करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि कैसे मैं अच्छा भक्त बनूं और कैसे लोगों को भक्त बनाऊं। ये नहीं सोचना चाहिए कैसे अच्छा डॉक्टर बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, इंजीनियर बनूं। आजकल तो लोग ऐसे होते हैं, क्या करें, मेरा बच्चा जी इंजीनियरिंग कर रहा है जी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, बड़े गर्व से कहते हैं। और अगर मान लो वहां पे भक्त पहुंच गए इस्कॉन के, दिल्ली के आईवीएफ के डिवोटी, और वो ड्रॉइंग बन गया भक्त, तो रोना, अच्छा बना इंजीनियरिंग कर रहा उसी, अभी पता नहीं क्या हो गया उसको, सारा दिन रेगिस्ता रेगिस्ता करता रहता है, रोना शुरू हो गया। कलयुग, समझ आ गया, कलयुग है,
जिसके लिए जन्म मिला है, जब वो आपका सार्थक हो रहा है तो होगा शुरू हो गया। तो डॉक्टर इंजीनियर बन के और बाद में अगर उसने सुसाइड कर लिया, तो एक व्यक्ति था उसने IIT से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने MBA किया, उसके बाद वो अमेरिका चला गया और $1.2 मिलियन कमाए उसने। उसने इतनी बड़ा उसने घर लिया, 2800 स्क्वायर यार्ड्स का, बिल्कुल पॉश लोकेलिटी में। और फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी नौकरी छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि बॉस के साथ कुछ उसने गुस्से में बोल दिया, इमोशनली स्टेबल नहीं था, कुछ बोल दिया, उसने फायर कर दिया बॉस ने। उधर से उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, वो भी डूब गए। इतना दुखी हो गया क्योंकि सब कुछ लूट गया। बंदूक उठाई उसने, रिवॉल्वर रखी हुई थी, पहले 3 बच्चे थे तीनों को मारा, फिर अपनी पत्नी को मारा, फिर उनकी सास, पत्नी की मदर भी साथ रहती थी, उसको भी मार दिया और फिर अपने आप को मार दिया। ये घटना न्यूज पेपर में आई थी अक्टूबर 2008 के न्यूज पेपर में, जाके पढ़ लेना, सच्ची घटना बता रहे। क्या फायदा, क्या फायदा, लाइफ स्टाइल लाइफ ही ले गया आपकी, आपका जो लाइफ स्टाइल है आपका लाइफ ही लेके चला गया। तो ये लाइफ स्टाइल मत दो बच्चों को, ऐसा लाइफ स्टाइल मत दो, ये दो, ये है लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल दो। यहां अच्छा सुखी खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे और इस संसार को जब छोड़ेंगे तो अगर पक्की भक्ति की तो भगवान के धाम जाएंगे, अगर पक्की भक्ति नहीं भी हुई तो अच्छा जन्म भी मिलेगा, कुत्ती बिल्ली का जन्म थोड़ा मिलेगा, चूहे का थोड़ा जन्म मिल जाएगा, कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिलेगा अगर आपने भक्ति की है। उसमें अगर आप पूरे नहीं भी हुए कोई बात नहीं, तभी भी नुकसान नहीं है, आगे कहेंगे भगवान ये बात, क्योंकि अर्जुन का ये प्रश्न आएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घबराओ नहीं, आप जाके लोगों को बताओ, इसमें से पढ़ो, समझो, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको अपनाओ। आजकल जो सारा जो टेलीविजन है, सारा मीडिया है, ये पता आपको ठग रहा है, ठग है, को पता नहीं है कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पहले ये चीजें बनाते हैं, लग्जूरियस चीजें बनाते हैं पहले है? फिर उनके एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट, एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है, उसके साथ नई गाड़ी आई है, उसके साथ नई लड़की खड़ी है, बार बार टेलीविजन में दिखाएंगे, बिलबोर्ड में दिखाएंगे। आपका मन कहता हो मैं कैसे लूं पैसा, मैं कैसे लूं पैसा, तो बैंक वाले आ जाते हैं, कहते हैं डोंट वरी आई आर यू वेरी रियल हियर टू हेल्प यू, टेक पर्सनल लोन, नो प्रॉब्लम, डायल ए लोन, नो प्रॉब्लम, टेक ए लोन, लोन ले लेते हो आप, बस हो गया, फिर काम हो गया आपका, गधे बन गए अब आप, उतारते रहो जीवन भर लोन, अब छोड़ भी नहीं सकते, नौकरी कहां से छोड़ोगे, लोन उतारना है जी, कैसे नौकरी कैसे छोड़ते हैं, फंस गए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस बात को समझो। वो व्यक्ति फ्री है जो व्यक्ति जिसने अपना जीवन बहुत सिंपल रखा हुआ है, सादा जीवन ऊंचे विचार, इसलिए हमने समझना है जीवन को सादा करना है और चीजों को हमने क्लैरिफाई करना है, समझना है क्या किस लिए है, पैसा किस लिए है, पैसा इसलिए है कि हमारी जान की आफत बन जाए, है ना, और फिर क्लैरिफाई करके फिर प्योरीफाई करना है अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी चीजों को प्योरीफाई करना है संग से, जैसे ये कर रहे हो आप, वेरी गुड, ऐसे लोगों को दो संग दो, आप उनको संग दो, लोगों को संग नहीं मिलता, लोगों को संग ही बेकार का मिलता है, ये चीजें वहां चर्चा होती है, नहीं ये आ गया, नया वो आ गया है? अब आपने मान लो स्टेटस बनाने के लिए नई गाड़ी ले भी ली, तो कितने दिन नहीं रहेगी, थोड़े दिन बाद फिर नया मॉडल आ जाएगा, फिर क्या करोगे, बड़ा लोन लेके कर करके आपने बड़ी गाड़ी ले ली, नई गाड़ी ले ली, फैंसी गाड़ी ले ली, उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी चीज ले ली, फोन ले लिया आपने, स्मार्टफोन ले लिया, अब स्मार्टफोन की कोई लिमिट ही नहीं है, पहले इतना अब इतना अब इतना, फिर एक टैबलेट, फिर ये वो, क्या कुछ करोगे, क्यों इस चक्कर में फंसते हो, क्या जरूरत है इन चीजों की, हम आत्मा है, शरीर थोड़ा है, आत्मा को क्या जरूरत है इन चीजों की, शरीर को जो चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत जरूरत है वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इतने सारे पशु पक्षी हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की, 80 लाख योनियां तो दूसरी है, वो कौन सी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कौन सी नौकरियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो खाने को नहीं मिलता क्या, वो कैसे खा लेते हैं, सब भगवान ने सारे व्यवस्था की हुई है, लेकिन माया के कारण जो है हम सोचते हैं कुछ नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस की कमी है, ये फैक्टर। अगर आपके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं लगेगी, कभी भी कमी है ही नहीं। कमी इसीलिए लगती है क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ना होने के कारण कमी ही कमी लगेगी, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कभी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को पक्का करना है, कृष्ण भावना में उसको बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा ऐसे ही जब आप प्रचार करोगे, जब लोगों को आप बताओगे, क्योंकि जब आप देते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो यही बातें हैं इस श्लोक में। मेन बात जो यही है कि कैसे जो है इतना बड़ा उनका उम्र होते हुए भी वो भी जो है इसी जन्म मृत्यु बुढ़ापा के चक्कर में है। इस भौतिक भ्रमण में भ्रमा भी जन्म जरा योग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। इसलिए ज्यादा उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए कि उम्र बढ़ा ली हमने, है ना। उम्र बढ़ाने से क्या लाभ, उम्र चाहे छोटी हो। चैतन्य महाप्रभु की उम्र कितनी थी, चैतन्य महाप्रभु कितने साल तक है, हैं? हाँ, 50 साल भी पूरे नहीं किए उन्होंने। तो उम्र, और ऐसी तो उम्र देखा है तो कितने पेड़ है, कितने लंबे लंबे जीते हैं, 300, 300, 400, 400 साल, 500, 500 साल पेड़ जीते रहते हैं, क्या फायदा, खड़े हैं। तो इसलिए उम्र के लिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, लंबी उम्र हो ये हो, आशीर्वाद भी देते हैं, ओ जी बड़ी लंबी उम्र हो तेरी, क्या फायदा लंबी उम्र का। उसको आशीर्वाद देना चाहिए, क्या देना चाहिए, हाँ कृष्णेर मति, कृष्ण के प्रति मति हो तेरी, ये है असली आशीर्वाद, ये है असली आशीर्वाद दे रहे हो उसको आप। लंबी आयु ये वो इसका क्या है, समय का तो घड़ी नहीं है ना, वहां तो घड़ी होती थी, ये लोग आ गए हैं ना, मैंने कहा कहीं समय का चक्कर तो नहीं है, इन लोगों को देख के लगता है इनके आने का मतलब यही है ना कि कुछ है भाई, जरा मैनेजर आ गए हैं, जरा ध्यान से देखो ठीक ठाक चल रहे हैं प्रभु जी हमारा, अभी है टाइम, वहां तो सामने घड़ी रहती है ना, कंफ्यूजन नहीं होता। तो अभी हम इसमें यही समाप्त करते हैं, थोड़ा सा समय है उसमें से आपको भी प्रश्न जिज्ञासा करो, आप तो बहुत सब इंटेलिजेंट और रेगुलरली आने वाले सब लोग हैं, तो काफी लोग तो हाँ वही प्रोग्राम करो आप अपने अपने वहां पे फैक्ट्री में करो प्रोग्राम, और क्या यही है, इसी को करो, जप करो, यही चीजें हैं, जप करो और ये भगवद्गीता पढ़ो, धीरे धीरे हमें इसी को बढ़ाना है ना। एक्चुअली हमारा 24 घंटे इसमें निकलना चाहिए, 24 घंटे मनुष्य शरीर मिला है इसीलिए कि भगवान का भजन करें बस, और किसी चीज के लिए नहीं मिला मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ये हमारी गलत फहमी है, मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, क्योंकि अगर मनुष्य शरीर भोगों के लिए मिलता तो फिर हमें बीमारियां क्यों होती भोग भोगने के बाद, जानवरों को तो नहीं होती, जानवरों का शरीर भोग योनि है, वो भोगों के लिए मिला है। हाथी कितना खाता है, टनोटन खाता है ना रोज, कभी मोटापे की बीमारी होती है उसको, यहां थोड़ा सा ज्यादा खा लो तो मोटे हो गए, मुसीबत पड़ गई, नहीं जिम में जाओ ये करो डाइटिंग करो ये करो, कितनी सारी मुसीबतें हैं। कुत्ते बिल्लियां हैं वो कोई एक स्त्री का व्रत धारण करते हैं क्या, है कोई बीमारी होती है उनको, यहां पर सब जगह लिखा होता है, पोस्टर लगे होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष से यौन संबंध रखो नहीं तो बीमारियां हो जाएंगी। कुत्ते बिल्लियों बंदरों को क्या बीमारियां होती हैं, कोई बीमारियां नहीं, भोग योनि है उनकी, भगवान ने सेंक्शन किया हुआ भोगो, वो योनि ऐसी बनाई है, कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हें, कितना मर्जी भोगो, जितना मर्जी खाओ, कितना मर्जी सोओ, सोते रहो 6 महीने, भानु को बोला 6 महीने सो जाते बोलोगे कुछ होता रहेगा, तुम्हें भूख भी लगेगी, भोग योनि बनाई है, सच बात बता रहा हूं आपको, ये मनुष्य योनि जो है तपस्या के लिए बनी है, भोगों के लिए नहीं बनी, जितना आपको चाहिए खा लो बस, दो रोटी एक रोटी जो थोड़ा बहुत चाहिए खाओ, इन्हें खाने के नाम पे रेस्टोरेंट ये वो मेमोज पेमोज, अरे क्या कुछ गंदी गंदी चीजें निकल आई है, मेमो को देख के तो वो मम्मी याद आती है, मम्मी वो मम्मी नहीं होती, डेड होती है डेड बॉडी, उसका कितना गंदा कलर होता है सफेद कलर, मैंने आज तक नहीं मेरा कभी मन नहीं किया उसको टेस्ट करने का, सच कह रहा हूं, देख के मुझे घृणा होती है कि ये खाने की चीज है, ऐसे लग रहा है पता नहीं किसी गंदी सी स्किन है क्या है, वो पता नहीं कैसे खाते हैं मेमोज मेमोज मोमोज क्या कहते हैं मोमोज 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 मोमोज। आप प्लीज आप इन चीजों से बचो और लोगों को बताओ, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, इन भोगों के लिए नहीं है ये मनुष्य शरीर, नहीं हम वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम भोगों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, भोगों के लिए नहीं बना है शरीर, ये भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बना है। हाँ, भगवान का साक्षात्कार करोगे दिव्य आनंद। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को यही संदेश दे रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र ने कहा, फिर आखिर में बता रहे हैं भव सूक्ष्म अनंतम। इसका क्या फल क्या मिलेगा? अगर तपो दिव्य तपस्या करोगे भगवान के लिए तो आपको दिव्य आनंद मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं है, अनंतम दिव्य आनंद। ये फैक्ट है, लेकिन इसके लिए पहले हमें रिस्ट्रेन करना पड़ेगा इन चीजों से। इन चीजों को अगर रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना, हमेशा शरीर समझेंगे अपने आप को, तो फिर कैसे इससे उठेंगे ऊपर। ठीक है, कुछ बता पाया? और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी, वेरी गुड, यस। ये सब भगवद गीता में सबका आंसर दिया हुआ है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से चलती आए, जैसे अपने हम भी तो देखते हैं ना, अगर बचपन में किसी ने गंदे काम किए हैं, बचपन से मान लो कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, बचपन से अभी 10 साल का नहीं हुआ, 8 साल का नहीं हुआ, सिगरेट की आदत पड़ गई, जैसे कई देखो बच्चे होते हैं, या एडिक्शन ही हुई कितने, आप देखो स्ट्रीट बॉयज वो होते हैं जो कोई बेचारों का है नहीं, अनाथ है। मैंने खुद देखा है कनॉट प्लेस में, बना से पड़े हुए ड्रग्स ले जाने पड़े हुए, कूड़े के ढेर के पास पड़े हैं, जानवर और उसमें फर्क ही नहीं ऐसे कोई। तो उसका क्या है, वो कोई जवानी तक पहुंचेगा ही नहीं, वो और जवानी तक जब पहुंचेगा तो हजारों बीमारियां लगी होंगी, 100% उसका जीवन जो है वो नहीं पहुंचेगा 50-60 साल तक। तो इसी तरह से जो हम ये कर्म करेंगे उसी तरह का आगे हमें शरीर मिलेगा। जैसे एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी समाधि भी है यहाँ पर शांतिवन में, वो बताया एक जो ज्योतिषी थे जानकर कि इनको अगला शरीर कुत्ते का मिला है स्वीडन में। स्वीडन में कुतिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक कुत्ते एक बच्चे में यही आत्मा गई है। यहाँ पर तो समाधि बनी हुई है, लोग समाधि के चक्कर लगाते हैं जाकर, क्या फल? आत्मा है ना, शरीर तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, खत्म तो हो गया ना। जो छोटा शरीर था आपका, जो छोटा शरीर था 5 साल का 10 साल का, कहाँ गया? तो आपकी दाढ़ी थोड़ा थी, दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अलग शरीर था ना वो। आप अगर मान लो कोई फोटो कभी ना देखी हो आपने, जब आप 5 साल के थे 4 साल के थे, आपने कभी नहीं देखी, कोई ला के दे आपको फोटो, मैं हूं, दिक्कत हो गई ना बताने में, तो ये शरीर बदल गया ना। ये भगवान बता रहे हैं, देहिनो अस्मि यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र मनुते। अर्जुन, जैसे तुमने इस जीवन में शरीर बदले हैं, इसी तरह से इस शरीर को छोड़ के तुम दूसरे शरीर में चले जाते हो, धीरज सत्र मनुते। धीर लोग जो है इससे परेशान नहीं होते। तो इसीलिए हमारे जो जैसे हम कर्म करेंगे उसके आधार पर हमें शरीर मिलेगा मोटा मोटा, और डिटेल्स तो बहुत है। जैसे अगर आपको ऐसे कर्म किए हैं कि आपको नरकों में जाना है, तो आपको पहले यातना शरीर मिलेगा। यातना शरीर ऐसा होता है कि आपको उबलते हुए तेल में अगर डाल दिया जाए तो मरोगे नहीं, हम मरते नहीं हो, अभी तो मर जाएंगे, हम मरते नहीं हो, लेकिन कष्ट उतना ही होता है। तो इसलिए यातना सहने के लिए वो शरीर मिलता है, यातना सहो। कहीं पशुओं का भी होता है ना, जैसे पशु का शरीर है, कितना मारते हैं उनको, घोड़े को चलाते हैं, कितना हंटर से मारते हैं उसको, नहीं चलता नहीं है तो हंटर से मारते हैं, बैल को मारते हैं, वो तो यातना ही है ना, यातना सह रहे हैं ना, वो मरते नहीं है। हमें उतने हंटर मर जाए वही हमारा प्राण निकल जाए। उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो यातना शरीर इससे भी ज्यादा आगे होता है। तो कर्मों के आधार पर होगा सब। तो इसीलिए हमें बेस्ट कर्म है भगवान की भक्ति करो, बेस्ट, सारे पापों को जला के एकदम, पिछले भी जो पाप किए हैं वो भी माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे दो मोक्षयिष्यामि मा सुता। सारे धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू डर मत, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और किसी का प्रश्न? तो हमारे में ये तो बताया ना, फ्री विल है ना हमारे में, ये तो डेंजर है, फ्री विल है हमारे में, फ्री विल का हमने मिस यूज किया, फ्री विल का मिस यूज किया, लेकिन अभी दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि भगवद गीता भगवान कह रहे हैं कि जो एक बार चला जाता है फिर मेरे वापस नहीं आता, ये तो बोला चला जाता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब नहीं लौटोगे, बस एक बार हो गया, गलती दोबारा नहीं होगा, तो भगवान ने गारंटी ले ली ना, भगवान ने भगवद गीता में कह दिया एक बार तो आ गए, अब एक बार तो गलती कर ली, अब नहीं करोगे। और और किसी का प्रश्न? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी तो समय भी होने वाला है, अभी तो समय है ना, तो पूछो ना प्रश्न, या मैं पूछूं फिर आपसे? हाँ, क्या 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 क्या? हाँ, ओके ओके। मैंने ये कहा था, मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो हम आत्मा है ना, और हम आत्मा को ये जो शरीर मिला है ये बंधन है ना, जैसा ये अब जेल में है, हम जेल में है, ये बंधन है। आत्मा जो है ऐसी कार्य कर रही है जैसे ये शरीर है ना, जैसे जो छोटा शरीर है वो तो यहां से निकल जाएगा, वो छोटा शरीर 5 साल का बच्चा तो यहां से भी निकल जाएगा, यहां बैठ भी जाएगा इसके नीचे, मैं तो नहीं बैठ सकता, और मेरे से जो और भी आगे बुजुर्ग है वो तो वैसे झुक भी नहीं पाएंगे, वो बैठने की बात तो अलग है। बंधन में आ गए ना हम, जैसा शरीर, और फिर सुअर का शरीर मिल गया तो गू खाएंगे हम, कितनी बदबू आती है, कितनी विष्ठा खाएंगे हम, लेकिन क्या करोगे, शरीर ऐसा मिल गया ना। आत्मा तो वही है, आत्मा में थोड़ा फर्क आया, आत्मा तो जो आत्मा इस शरीर में वही आत्मा, सुअर के शरीर में वही आत्मा, कुत्ते के शरीर में है, लेकिन जैसा शरीर मिलता है उसी तरह से व्यवहार करती है। बंधन में आ गए ना हम लोग, बद्ध गए हम, इसीलिए इसको कहते हैं बद्ध जीव, कंडीशनड सोल, कंडीशन हो गए, जैसी कंडीशन में डाल दिया गया उसी तरह से हम व्यवहार करेंगे। तो बैड बार्गेन नहीं है ना ये, जिस तरह से हमें इस शरीर में, जैसा शरीर हमें मिला है, जैसे किस तरह लोग हैं, उनका उनका दिमाग ही नहीं होता, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कर ही नहीं सकते, उनको समझ ही नहीं आती कई चीजें, उनको समझ नहीं आती जो आम है। कई लोग इतने मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि अपना बटन भी नहीं बंद कर सकते, पता है आपको, बड़े हो जाते हैं वो लेकिन बटन नहीं बंद कर सकते हो, इतना उनका दिमाग कम, क्या करोगे, बद्ध है ना वो। आत्मा तो वही है, आत्मा में थोड़ा सा फर्क है, उनकी आत्मा कोई अंतर है, शरीर ऐसा मिल गया उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये बैड बार्गेन है, शरीर लेना ही ये बैड बार्गेन, आत्मा को शरीर नहीं धारण करना चाहिए। आत्मा का जैसे भगवान का कोई शरीर थोड़ा, भगवान ने कोई शरीर थोड़ा धारण किया है, हम भगवान के तो अंश है ना, भगवान थोड़ा शरीर धारण करते हैं। जैसे भगवान का आध्यात्मिक शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद का बना हुआ, ऐसे ही हमारा शरीर है। तो जब हम मुक्त हो जाते हैं अपने कर्मों से तो वैसे ही हमें शरीर मिलता है जैसे भगवान का है, सच्चित और आनंद का बना हुआ। ये भौतिक शरीर है, ये बनावटी है, ये नाशवान है, वो नाशवान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप पिक्चर देख रहे हो, हैं, पिक्चर देख रहे हो तो वहां पर भी तो शरीर होते हैं, अमिताभ बच्चन का शरीर है, सारे हीरो हीरोइन है, सबका शरीर है, लेकिन जैसे लाइट गई शरीर गए, लाइट ऑफ हो गई कहां गए शरीर, शरीर है ही नहीं, कहां गए शरीर, कोई लाइट के बनाएंगे मेरे शरीर, अब यहां लाइट चली गई तो हमारे शरीर गुम हो जाएंगे क्या, अभी लाइटें बंद कर देंगे हमारे शरीर गुम हो जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये लाइट के नहीं बने हुए, ये पांच भूत तत्व के बने हुए, अग्नि वायु आकाश जल, इसका अंतर है। शरीर तो नजर आते हैं वैसे ही, अमिताभ बच्चन का शरीर जो फिल्म में देखते हो वैसे तो नजर आता है, अलग थोड़ा नजर आता है, लेकिन तत्व अलग है, वो लाइट का बना हुआ है, लाइट गई तो गुम, शरीर भी गुम लुप्त। इसी तरह से भगवान का हमारा शरीर एक जैसा नजर आता है, लेकिन तत्व अलग है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, और हम ये नाशवान पंचभूत तत्व के बने हुए हैं। ये जैसे ये धीरे 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 विकार होगा, बुआ होगा, आखिर में गया, भगवान का शरीर थोड़ा सा, भगवान को कभी बुरे होते देखा, उसी के हम अंश है, तो हम कौन इन चक्रों में पड़े, ये तो बैड बार्गेन है ना, बैड बार्गेन कर लिया कि हम भगवान जी हम इंजॉय करेंगे आपसे अलग रह के, भगवान ने कहा ले लो शरीर, तुम भी ले लो, भोगो जाओ, बनो भगवान, मुसीबत क्या है, ये तो मुसीबत है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये बीमारी है हमारी, हम भगवान बनना चाहते हैं यहाँ आके, और जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम हमारा स्वरूप क्या है, हम दास हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो इक्वेशन ठीक हो जाती है, इसलिए जप करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हम अपनी पोजीशन में आ गए, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और किसी का प्रश्न? वेरी गुड, इंटेलिजेंट, और कुछ हो, क्लियर करो चीजों को, पूछो ए, तो ले तो यही से अपने आप केमिकल से सेल थोड़ा बना रहे हो, सेल तो बंदे का ले रहे हैं ना, जीवित बंदे का, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने किताब, प्रभुपाद जी की एक कन्वर्सेशन है, उनके शिष्य ने लिखी किताब, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीन्स कहां से ले रहे हैं, बनाने में जीन खुद उनको पता लग गया डीएनए है ये है वो है सब बोल रहे हैं, तो खुद बना लो ना, केमिकल से बनाओ एक। आत्मा तो जा सकती है ना, जैसे जैसे हार्ट, आत्मा कहां रहती है, आत्मा रहती है हार्ट में, हार्ट वाली जगह पे कहते हैं रहती है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो फिर क्या आत्मा का होता है, कहते हैं ये हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, इसका हार्ट उसमें डाल दिया, तो आत्मा तो अलग है ना, अलग। जैसे अगर ये हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस कमरे से अलग है ना, ये कमरा थोड़ा है, अगर ये कमरा टूट गया तो हम थोड़ा टूट जाएंगे, ये कमरा तो ईंटों पत्थरों का सीमेंट का बना हुआ है ना, हम थोड़ा इसके बने हुए हैं, हम यहां बैठे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन हम ये कमरा थोड़ा है। इस तरह से आत्मा शरीर में है, लेकिन आत्मा शरीर थोड़ा है, तत्व अलग है ना, वो तो बताया भगवद गीता में शुरू में, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलदंत्यापोषति मारुता, अलग तत्व है ना, वो भौतिक तत्व नहीं है, वो किसी तरह से भी बिहेव कर सकता है, वो कैसे भी किसी भी तरह से जा सकती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहां से जैसे कई लोगों ने बताया, वो मूर्खता है, कई लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति आदमी मरने वाला था, तो उन्होंने उसको ना एक एयर टाइट उसमें शीशे के उसमें कफिन में बांध दिया, फिर जब वो मरा तो शीशा टूट गया, ऐसा लगा जैसे उसमें से आत्मा निकली है, मूर्ख। वो आत्मा को तोड़ने की जरूरत थोड़ा है शीशे को, आत्मा को अगर यहां से बाहर जाने तो उसको दीवार को तोड़ने की जरूरत थोड़ा है, नहीं तो समझना है, वो अलग तत्व है, वो एंटी मैटर है, वो मैटर नहीं है, मैटर से अलग उसकी है, एनर्जी के फॉर्म में नहीं है वो, और तत्व अलग है, एनर्जी भी भौतिक है, एनर्जी भी भौतिक है, वो अलग तत्व है, वो भगवान जिसके बने हुए उसी की आत्मा बनी हुई है, भगवान का अंश है वो, जिसके भगवान है उसी की वो आत्मा बनी हुई है। इसीलिए जब आप अपनी आत्मा को प्यूरीफाई करते जाते हो, आप अपनी आत्मा को इस शरीर से इस संसार से निकालते चले जाते हो, तो देन यू कैन डू वंडर्स, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी की जीवनी में देखो कैसे कर लिया उन्होंने, 70 साल की उम्र में, कितने लोग हैं यहां पे जो 70 साल के हैं, एक व्यक्ति है बस, एक ही व्यक्ति है, क्योंकि 70 साल के, मैं जहां भी जाता हूं मैं पूछता हूं कितने व्यक्ति हैं 70 साल के, मुश्किल से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है, और 70 साल के व्यक्ति घर से बाहर ही निकलता है, इतनी ठंड में, खास तौर से ठंड बहुत ठंड लग रही है, बुढ़ापे में ठंड ज्यादा लगती है, नहीं निकलते। प्रभुपाद जी आपकी उम्र में अमेरिका गए, पता नहीं आपको, माल वहां जहाज में बैठ के, आपकी उम्र के थे 70 साल के, एक आंदोलन खड़ा कर दिया सारी दुनिया में, ऐसी कोई बात, ये है आत्मा अलग है, एनर्जी एनर्जी तो सब यहां की चीजें हैं, तो वो कैसे कहीं भी एक साल में भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, उसको आप नहीं पकड़ सकते। तो अगर ये करना चाहते हैं, अपने इंजीनियरिंग दिखाना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियर, तो पहले जीन बनाए ना, फिर करें, जीन तो ले लिया भगवान का, और अब टूटा टीटा कर रहे हैं और अपने स्पेकुलेशन दिखा रहे हैं, चीट करते हैं ना आपको, और हम भी चीट हो जाते हैं,
हम मॉडर्न लाइफ को जीते हुए,
इसलिए पॉलिटिक्स
में घुसकर उसको साफ किया जाए, तो इसमें घुसकर मतलब मॉडर्न लाइफ में घुसकर ज्यादा अच्छी तरह से फैला सकते हैं, ताकि ये स्वर्णिम युग का जो पीरियड है वो ज्यादा चले, या फिर वो
नहीं, आप जो अगर सीधा है, सिंपल बातें सिंपल वालों को सिंपल रहने दो, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, आपको समर्पण करना पड़ेगा, दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, कभी भूल भलैया में गए हो, भूल भलैया में कभी मौका लगा है, किसी का मौका लगा भूल भलैया, लखनऊ में है भूल भलैया, वो तो कुछ नहीं है, अच्छा ये भी कुछ नहीं है, लखनऊ में है, आपने देखी है ना, उसमें कोई आदमी घुस जाए निकल सकता है नहीं ना। देखो ऐसे ही संसार से ये भूल भलैया है, दिमाग लगाओगे मुसीबतों में, वो मुसीबतों में दिमाग लगा के साइंस कहां से कहां पहुंची है, साइंस ने जब कार बनाई तो उन्होंने क्या कहा, बाय एडवर्टाइजमेंट आती थी, बाय ए कार फॉर ए क्लीनर एनवायरमेंट, बता रहा हूं फैक्ट बता रहा हूं, जब पहली कार आई तो उन्होंने ऐसे उसको, क्योंकि उससे पहले क्या घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़े कहीं भी लीड कर देते थे, बदबू आती थी जगह जगह बदबू, उन्होंने कहा दिस कार नो लीड नथिंग बाय ए कार, और आज देखो क्या हाल है, कार ने सारा एनवायरमेंट आपका, खांसी खाऊं खाऊं, ये सब किसके कारण है, सारी लंग्स की बीमारियां किसके कारण है, ये जो कारें पॉल्यूशन कर रही है, तो ये माया है, आप जिस चीज को पकड़ना चाहते हो वही उल्टा करके सामने आएगी आपके, उल्टा यहां तो रहे जेनेटिक्स इंजीनियर सारे सामने आ रहे हैं ना इनके, समझी, वी डोंट वांट अनवांटेड चिल्ड्रन, प्लान वी विल प्लान अवर फैमिली। तभी तो सारे चिल्ड्रन ही अनवांटेड है, वांटेड चिल्ड्रन तो नजर ही नहीं आते। नहीं समझ आ रही ना बातें, ये है माया, ये भगवान की माया है। इसको जब इसको जब खेलोगे आपको वही पकड़ेगी, जिस चीज से छूटना चाहते हो उसी में लेके मारेगी आपको। इसलिए भगवान को समर्पण कर दो और आगे बढ़ जाओ और खुश हो जाओ। हम बच्चे हैं भगवान के, भगवान आपको इंतजार कर रहे हैं, पिता हैं। रिवोल्ट नहीं करो उसके साथ, क्या मिलेगा, मुंह की खाएंगे हम। इतिहास में देखो किसने मुंह की नहीं खाई, हिरण्यकशिपु कितना स्मार्ट बनता था, ब्रह्मा जी के पास गया तपस्या की, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे बना दू, यही तो लिखा हुआ, मैंने भी मरना है, तुम्हें कैसे अमर होना। अच्छा चलो फिर एक काम करो, ना तो मैं दिन में मरू ना रात में मरू, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र, ना कोई जानवर माने ना मनुष्य माने, ना दिन हो ना रात हो, सारे उसने नाकेबंदी कर ली। अब कैसे मरूंगा नाकेबंदी, ये तो साइंटिस्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये बना हो मैंने किसी को है ना, थोड़ा देर आंसर लड़ रहे साइंटिस्ट को आंसर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, ये भी साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं ये।
लोगों को जोड़ने के लिए मतलब जैसे मॉडर्न लाइफ में रहकर मतलब कुछ मतलब लाइफ स्टाइल में रहकर ज्यादा लोगों को जोड़ सके, अच्छा कहने का, नशा छुड़वाने के लिए नशा करें, उनके बीच में जाएं, फिर उसके बाद
अरे पता होता है ऐसे नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि पहले तो हमें जैसे उन्होंने कहा पहले तो नशा छोड़ना है ना,
जो चलता रहे उसे देखता रहे, और हम जैसे ऐसा नहीं, मैं अपनी बात अपना सोचे हम अपना,
वही हम आपको समझा रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि हमारे रूप गोस्वामी भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें हम बोलते हैं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का मतलब है कि आप चीजों को छोड़ो नहीं, चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। बट सेवा में लगाने के लिए पहले वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो आप भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, आपको लगेगा कि भगवान की सेवा में लगाने लगा रहे हो अपनी सेवा में। तो इसी से जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, पहले तो नशा छोड़े हम, फिर हम उनको समझाएं कि हाँ कैसे नशा छोड़ना है, खुद भी नशा कर रहे हैं और फिर उनको कैसे हम कहेंगे छोड़ो नशा, है कि नहीं। ऐसे तो हमारे मंदिर में भी सारी चीजें यूज हो रही है, लेकिन भगवान की सेवा में प्योरली, यहां भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, यहां भी सारे रोबोट्स हैं, सब चीजें, लेकिन प्योरली भगवान की सेवा में, और वो लोग यूज कर रहे हैं जो उनसे परे हैं। यहां पर कोई कंपनियां नहीं आगे यूज कर रही है, कंपनी आ रही है जी, एक कंपनी को दे दिया रॉबोट शो चलाओ जी, समझ लो कौन इनके पीछे कौन है, बैरागी लोग हैं, बैराग है इनको, इनको निनाउंस है जो इन चीजों से, अगर इन चीजों से अटैच है, इन चीजों में नशेड़ी है, तो आपको नशा क्या छुड़ाएंगे, जब मौका पड़ेगा तो पी लेंगे वो खुद। ये पॉइंट है, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया आपका, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है अभी तो समय हो गया है, ठीक है प्रभु जी, ओके थैंक यू, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।